हरे कृष्ण। तो ये सातवां स्कंध है, अध्याय तीन, श्लोक संख्या है 34। अनंत अव्यक्त रूपेण येना अखिलं ततं चित् अचित् शक्ति युक्ताय तस्मै भगवते नमः। अनंताव्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं येनेदमखिलं ततं दिदितिच्छ अक्तियुक्ताय दिदितिच्छक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। अनंताव्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचित्तयुक्तियुक्ताय तस्मै भगवते नमः। अनंताव्यक्त रूपेण येनेदमखिलं ततं चिदचित्तयुक्ताय तस्मै भगवते नमः। शब्दात् अनंत अव्यक्त रूपेण असीम अप्रकट रूप द्वारा येना जिससे इदं यह अखिलं संपूर्ण ततम विस्तारित चित आध्यात्मिक अचित भौतिक शक्ति शक्ति युक्ताय से युक्त तस्मै उस भगवते भगवान को नमः। मैं सादर नमस्कार करता हूं। अनुवाद तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। अनुवाद, मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड के समग्रता में विस्तार किया दिया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्रित तटस्था शक्ति पाई जाती है। मेरे पीछे दोहराइए, मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार दिया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्रित तटस्था शक्ति पाई जाती है। तात्पर्य, भगवान अनंत शक्तियों से युक्त हैं। परास शक्तिर विविधाय एव श्रूयते, जिन्हें बहिरंगा अंतरंगा तथा तटस्था के रूप में संक्षेप में बताया जाता है। बहिरंगा शक्ति से ये भौतिक जगत प्रकट होता है, अंतरंगा शक्ति से आध्यात्मिक जगत और तटस्था शक्ति से सारे जीव प्रकट होते हैं। ये तटस्था शक्ति अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्ति का मिश्रण है। जीव परब्रह्म का अंश होने के से वास्तव में अंतरंगा शक्ति है, लेकिन बहिरंगा शक्ति के संपर्क में होने के कारण वह भौतिक तथा आध्यात्मिक लीलाओं में लगे रहते हैं। भौतिक शक्ति उनकी लीला की अभिव्यक्ति मात्र है। मैं उन परब्रह्म को नमस्कार करता हूँ जिन्होंने अपने अनंत अव्यक्त रूप को विराट जगत के रूप में ब्रह्मांड की समग्रता में विस्तार दिया है। उनमें बहिरंगा शक्ति तथा अंतरंगा शक्ति और समस्त जीवों से समन्वित मिश्र तटस्था शक्ति पाई जाती है। तो यहाँ पर भगवान की एकदम कंप्लीटनेस के बारे में यहाँ बात की जा रही है, यहाँ पर कि भगवान किस तरह से एकदम पूर्ण है, इसे श्री प्रभुपाद बोला करते थे कृष्णा इज नॉट गॉड, कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो अगर कोई बोले भी आप बोलते हैं कृष्ण भगवान है, हम नहीं मानते, तो हम गौड़ीय वैष्णव भी यही मानते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। कृष्णा इज नॉट गॉड, कृष्णा इज सोर्स ऑफ गॉड, कृष्ण स्रोत है भगवान के। तो भगवान कौन? विष्णु, नारायण, नरसिंह, ये भगवान है, दे आर गॉड्स, बट कृष्णा इज नॉट गॉड, कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो कृष्ण जो है किस प्रकार से पूर्ण है और में किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो यहां पर बताया जा रहा है। तो यहां पर भले ही वो इस संसार में अपना विस्तार करते हैं, लेकिन फिर भी वो एज इट इज वैसे के वैसे बने रहते हैं। इसलिए श्री प्रभुपाद एग्जाम्पल दिया करते थे पारस मणि का, कि पारस मणि जिस चीज को छूता है उसे सोना बना देता है, लेकिन पारस मणि के अंदर खुद कोई चेंज नहीं आता। इसलिए मायावादी अक्सर यहां पर अटक जाते हैं, क्योंकि अब ये संसार है, अब सब कुछ है तो ब्रह्म, एको ब्रह्म द्वितीय नास्ति, भाई सब कुछ ब्रह्म ही है, तो फिर ये संसार कैसे आया? तो संसार वो कहते हैं भाई संसार क्या, ब्रह्म के अंदर जब विकार आ जाता है ना, तो फिर ये संसार प्रकट होता है। लेकिन शास्त्रों में ये भी आता है कि ब्रह्म के अंदर विकार आता है नहीं, तो फिर ये कैसे हो गया? तो यहां पर इस तरह की कुछ चीजें हैं, वहां पर मायावादी अटक जाते हैं। तो वो कहते हैं भाई वो क्या काल्पनिक विकार आया। अब सोचिए, अब एक निराकार वस्तु जो है, एक निराकार चीज, वो भला कल्पना कैसे कर सकती है? देखिए ना, भी नहीं कल्पना। या फिर मायावादी बोलते हैं ये निराकार ब्रह्म की जो परछाई पड़ रही है माया के ऊपर, वो जो परछाई है वो जीव है। अगर जीव जान जाए कि अरे परछाई असली चीज नहीं है, ऊपर तत्वमसि, तो वो जान जाए कि भाई अरे मैं और उस खुदा के में तो कोई है ही नहीं, मैं खुद खुदा हूं, मैं ही भगवान हूं। लेकिन अगर इसके अंदर भी एक फ्लॉ है, परछाई उसकी बनती है जिसका रूप होता है, जिसका रूप ही नहीं है उसकी परछाई कैसे बनेगी? जैसे कि हवा की परछाई बनती नहीं, रूप है ही नहीं, रोशनी, रोशनी की परछाई नहीं बनती, रूप नहीं है, या खुशबू, खुशबू की परछाई देखी किसी ने? नहीं। तो जिसका रूप ही नहीं होता, अगर निराकार ब्रह्म की बात करें जो कि निराकार है, उसकी परछाई बननी नहीं चाहिए। अगर उसकी परछाई बनी, यानी कि उसका रूप है, चश्मे खेलते थे ना कि घोड़ा रगा दिया, अब या तो अपना ऊंट बचा या अपना हाथी बचा, या तो ये मानो कि भगवान का रूप है, या फिर अपनी बात वापस ले लो कि हम लोग परछाई हैं भगवान की। तो ये बिल्कुल जो है, ये मायावादी ऐसे कई जगह जाके फंसते हैं। वो विशेष रूप से जैसा ही पहला शब्द यहां पर आया, अनंत अव्यक्त रूपेण, अब रूप की भी बात हो रही है और अनंत भी हो गया, कॉन्ट्रडिक्टरी है। ऐसी भला क्या चीज हो सकती है जो कि जैसा कोई रूप नहीं है, अनंत है, और साथ में रूप भी है, रूपेण है, अनंत अव्यक्त भी हो सकता था, अनंत अव्यक्त तत्वेन, समथिंग लाइक दैट, अनंत अव्यक्त रूपेण, ये रूप क्यों घुसा दिया? तो ऐसी कई जगह है शास्त्रों में जो है वो मायावादी, निराकारवादी या शुष्क दार्शनिक फंस जाते हैं। जैसे एक बार एक व्यक्ति आया, उसने ना एक वैष्णव मंदिर के बाहर लिख दिया, सो हम, मैं वही हूं। तो भक्त बाहर आया, उसने देखा अरे बाहर क्या लिख दिया उसने, सो हम, या कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ डाल देते हैं, आगे दा लगा दिया उसने, तो हो गया दा सो हम, दासो हम, मैं दास हूं। अगले दिन फिर मायावादी आया, निकाल रही है ये जो वैष्णव है ना, कंफ्यूज लोग हैं, दासो हम लिख दिया, कोई बात नहीं, आगे हम स लगा देते हैं, उसने स लगा दिया, सदा सोहम, मैं हमेशा से वही हूं। तो भक्तों क्या चाहिए? दा लगाना है, दास दासो हम। तो उसके बाद मायावादी ने कुछ नहीं किया। तो जो मायावादी होते हैं इस प्रकार से यहां पर कई चीजों में फंसते हैं। तो अव्यक्त रूपेणा, अनंत रूपेणा, अनंत है लेकिन रूपेणा, जैसे प्रभुपाद जी एक बार अफ्रीका में थे तो प्रवचन दे रहे थे, तो प्रभुपाद जी ने कहा कृष्णा इज ब्लैकिश इन कलर, कृष्ण जो है वो ब्लैकिश है। तो अफ्रीकी लोगों को लगा कि ना ये हमारे भगवान की बात कर रहे हैं, हम भी काले, ठीक है ये भगवान भी काले, तो कृष्ण अवश्य कोई अफ्रीकी भगवान रहे होंगे। प्रभुपाद जी हमको याद दिलाने के लिए आए हैं, तुम लोगों के अफ्रीकी भगवान कृष्ण, तुम भी काले, भगवान भी काले। तो बड़ा एम्पथाइज कर रहे थे, बड़ा जुड़ रहे थे प्रभुपाद जी की बात से, लेकिन प्रभुपाद जी समझ गए कि गलत तरह से जुड़ रहे हैं। तो प्रभुपाद जी ने कृष्णा इज ब्लैक बट नॉट लाइक यू, कृष्णा इज रिफल्जेंट, तो भगवान से जो है प्रकाश न कर, कृष्ण का जो श्याम वर्ण है वो अलग है, तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम काले हो लेकिन तुम्हारे से कोई प्रकाश तो नहीं निकल रहा ना। तो इस प्रकार से कृष्ण का जो रूप है वो बहुत ही अलग है। इसलिए अगर कभी पेंटिंग कॉम्पिटिशन होता है बच्चों का ना, तो पेंटिंग कॉम्पिटिशन के अंदर अगर बच्चे से कहो कि कृष्ण का बनाए कलर भरे, तो कोई पर्पल भरता है, कोई ब्लू भरता है, कोई पिंक भी भर देता है, और नहीं मिला कोई स्केच पेन क्या करें, बनाना तो है ही। सो पीपल फिल डिफरेंट डिफरेंट कलर्स। कृष्ण का ऐसा रूप, जैसे एक बार एक बच्चे से पूछा, गुरुकुल का बच्चा था, उसे पूछा बताओ बेटा कृष्ण किस रंग के हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ कृष्णा। कहा टीचर ग्रीन कलर। बेटा भगवान राम ग्रीन कलर के हैं, तुमको किसने बोल दिया कि ये कृष्ण जो है ग्रीन कलर के हैं। कहते ये इस्कॉन डिवोटीज बोलते हैं, इन्होंने बोला मेरे को ग्रीन कलर के। कहते क्या बोलते हैं वो लोग, कहते बोलते हरे कृष्ण हरे राम, कृष्ण भी हरे हैं राम भी हरे हैं। तो अव्यक्त रूप है ना, एक ऐसा रूप है भगवान का जो कि हमारे चिंतन के परे है, चिंतन के परे है। जब रावण भी भगवान राम से युद्ध कर रहा था ना, कुछ समय के लिए वो भी स्तब्ध हो गया था, मैं इनसे लड़ने जा रहा हूं क्या, क्या खूबसूरत दिखते हैं, इतने खूबसूरत व्यक्ति के ऊपर मैं तीर चलाऊंगा। तो वो रावण फिर उसको नहीं, फिर वापस उसका अहंकार आया, नहीं 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 लड़ना है मुझे सीता 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 का भोग करना है, फिर वो फिर से वापस आ गया। लेकिन भगवान का रूप देख के जो है वो भी खो गया। ऐसे महाप्रभु जब बंगाल से जब जा रहे, तो बॉर्डर से जब गुजर रहे थे, तो जो टैक्स कलेक्टर था उसने टैक्स नहीं लिया, उसने कहा ये जो तुम्हारे साथ जो व्यक्ति जा रहा है ना गौर वर्ण का, ये इतना खूबसूरत है, इसको देखने के बाद ना मेरा टैक्स लेने की इच्छा नहीं है, तो बिना टैक्स के जाने दिया भक्तों को। तो भगवान का रूप जो है बहुत बहुत सुंदर है। तो प्रभुपाद जी वाला बता रहे हैं भगवद्गीता के तात्पर्य में कि इस संसार के रूप और रंग के प्रति जो हमारा आकर्षण है, संसार के रूप रंग के प्रति हमारा कितना आकर्षण है, स्त्री पुरुषों के प्रति, पुरुष स्त्रियों के प्रति, अगर कोई स्वादिष्ट वस्तु मिल जाए कहीं पर सजी हुई है तो उस खाने का मन करता है। तो संसार के जो रूप रंग है उन्होंने हमारी चेतना को कितना ज्यादा प्रभावित किया हुआ है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं जब कृष्ण के रूप के प्रति आकर्षण हो जाता है तो ये संसारिक रूप रंग फीके पड़ने शुरू हो जाते हैं। श्री श्री राधा राधिक रमन जी की जाय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जाय, श्री कृष्ण बलराम की जाय। तो इस प्रकार से जो है ये भगवान का सुंदर रूप, इसके और आकर्षित होना बहुत जरूरी है। लेकिन इसकी शुरुआत होती है हरि नाम से, हरि नाम से शुरुआत होती है भगवान के रूप के प्रति आकर्षण की। तो यहां पर भगवान की कंप्लीटनेस के बारे में बताया जा रहा है, उनकी अंतरंगा शक्ति भी है, उनकी बहिरंगा शक्ति भी है, और साथ में तटस्थ शक्ति भी है। इसे कभी कभी लोग हमसे पूछते हैं भाई आप लोग ये ओम क्यों नहीं बोलते, ओमकार के बारे में पूरे शास्त्र में वर्णन आता है, आप लोग हरे कृष्णा करते हो, ये ओम ओम क्यों नहीं करते आप। लेकिन ओम जो शब्द है वो ही आ रहा है अ उ म, अ उ म, इनको अगर एक साथ बोलते हैं तो बनता है ओम ओम, इनको अलग अलग इसकी संधि विच्छेद करें तो अ उ म। अ का मतलब है कृष्ण, एक्चुअली शक्तिमान कृष्ण। उ उ का मतलब है ऊर्जा, आध्यात्मिक ऊर्जा, यानी श्रीमती राधा रानी, आध्यात्मिक शक्ति, अंतरंगा शक्ति। और म का मतलब है जीव शक्ति। तो अ उ म, तो वास्तव में आध्यात्मिक जगत को सिग्निफाई करने के लिए एक शब्द है, वो है ओम। और ये ओम निकलता कहां से, भगवान की वेणु से, भगवान प्ले करते तो उसमें से ओम निकलता है। तो ओम जो है ब्रह्मा जी के कानों में प्रवेश करता है तो उनको दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है, ओम ओम। इसलिए आप देखोगे ओम जो है ना वो एक्चुअली इस संसार में व्याप्त है। जैसे कि बच्चा जो रोता भी है ना तो उसके अंदर ओम, आप सुनाए आप ऐसे ध्यान से सुने दो, ओम ओम है उसके अंदर, ओम हर एक ध्वनि के अंदर ओम है। या कभी समुद्र के किनारे जाइए आप, ओम ओम उसमें भी है, हर एक चीज के अंदर। या जैसे आपने कभी भंवरे देखे, ओम, तो हर एक वस्तु का आधार भगवान की शक्ति है, आध्यात्मिक जगत हो भौतिक जगत हो, लेकिन ये ओम ओम और कुछ नहीं है, राधा कृष्ण। तो ये राधा कृष्ण सब और व्याप्त है वास्तव में। इसे जो भक्त होता है वो कभी भगवान को कभी खोता नहीं है, भगवान जैसे गीता में बता रहे, क्योंकि सब जगह वो भगवान की शक्ति को देख पाता है। जब भगवान से शक्ति को अलग देखते हैं तब हम लोग जो है राक्षस कहलाते हैं, या फिर दानव कहलाते हैं, या फिर असुर कहलाते हैं। कहते हैं मिले सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा, तो हमारा सुर जब भगवान के सुर से मिल जाता है तो हम सुर कहलाते हैं, जब भगवान से हमारा सुर नहीं मिलता तो हम बेसुर नहीं असुर कहलाते हैं। तो ये जो ओम है ये किस तरह से जो है भगवान इस सृष्टि में आध्यात्मिक जगत में हर एक भक्त के हृदय में हर जीव के हृदय में किस तरह से पूरी सृष्टि इसमें इसमें ये व्याप्त है, जब ये दृष्टि आनी शुरू हो जाती है तो वास्तव में ऐसे व्यक्ति के लिए माया तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ माया, देयर इज नो मटीरियल वर्ल्ड फॉर अ डिवोटी, दैट्स व्हाई फॉर अ प्योर डिवोटी देयर इज नो सच थिंग एज माया, क्योंकि हर वस्तु कृष्ण की सेवा के लिए, हर वस्तु कृष्ण की है। तो जब इस चेतना में व्यक्ति सोच चलता है तो उसको किसी प्रकार का भय नहीं रहता, नो फियर। ऐसे प्रभुपाद जी बोला करते थे, प्रभुपाद जी से किसी ने पूछा था, प्रभुपाद हाउ कम यू आर सो अट्रैक्टिव, आप इतने आकर्षक कैसे हैं? प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम सेक्स डिजायर। माय गॉड, तो जब हम इस प्रकार के कलमशों से मुक्त हो जाते हैं तो हम आकर्षक हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम कृष्ण को अपने हृदय में रखे हुए हैं, फिर कृष्ण हमारे हृदय में है। तो यहां पर यह बात हो रही है कि किस प्रकार से जो अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्थ शक्ति, अब तटस्थ शक्ति के बारे में यहां यह बताया जा रहा है कि तटस्थ शक्ति के अंदर दोनों गुण हैं, बहिरंगा के भी और अंतरंगा के भी। इसलिए अगर हम भक्ति साधना अगर करते हैं ना तो ज्यादा से ज्यादा अपना जोर लगा के हम निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं। तपस्या करें, फास्टिंग करें, खूब कठोर व्रत रखें, कई धामों की परिक्रमा करें, सब करें, मैक्सिमम हम लोग निराकार ब्रह्म तक जा सकते हैं, लेकिन वैकुंठों में हम लोग प्रवेश नहीं कर सकते। वैकुंठ में प्रवेश भगवान की लीला शक्ति के बिना हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो सच्चित आनंद है ये हमारे अंदर है, लेकिन ये है ब्रह्म सत्व, ब्रह्म ज्ञान और ब्रह्मानंद, ये आत्मा के अंदर है। लेकिन भक्ति सत्व, भक्ति ज्ञान और भक्ति आनंद, इसके लिए उसको भक्ति देवी की कृपा की आवश्यकता पड़ती है, उसको रिलिश करने के लिए। अगर वो नहीं होता तो ये तीन इस जगत में हम लोग देखते हैं, जड़ तत्व, जड़ ज्ञान या जड़ विद्या और जड़ानंद, फिर इसी में लगा रहता है जीव, इसी में लगा रहेगा। एट द मोस्ट इससे फ्री होके वो निराकार ब्रह्म तक पहुंच सकता है, लेकिन भगवान की लीला के अंदर प्रवेश करने के लिए जिसका सुख करोड़ों 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 गुना ज्यादा है, एक्चुअली इनफैक्ट कोई गिनती नहीं है, अनंत है, उसके लिए भगवान की कृपा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, अंतरंगा शक्ति की आवश्यकता पड़ती है। और अंतरंगा शक्ति के कैरियर होते हैं भक्तगण। तो भक्त जो है भक्ति देवी को अपने हृदय में लेके चलते हैं और फिर भक्ति देवी हृदय से हृदय में प्रवेश करती है। इसे भगवान श्री कृष्ण वासुदेव जी के मन में आए, फिर वहां से देवकी के मन में, फिर देवकी के मन से उनके गर्भ में। तो कृष्ण जो है मन से मन में ट्रैवल करते हैं, हृदय से हृदय में ट्रैवल करते हैं, इस तरह से वो यात्रा करते हैं कृष्ण। तो भक्ति इस प्रकार से हमको प्राप्त होती है, अंतरंगा शक्ति के अनुगत्य हो गए। ये तो मिल नहीं सकती, बहुत कठिन है। इसे सरप्राइज डिवोटी जो जब भी करते हैं तो हरे कृष्ण हरे एज दे आर रेसलिंग विद द होली नेम, कि आज तो हरा के रहूंगा, कि भगवान का नाम लेगा भाई बहुत हो गया यार, आज तो बहुत मेहनत की तुमने, आज मैं आप तो हो गया। अपने प्रयास से तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। 16 माला करने के बाद एक्चुअली जो हरिनाम प्रभु हमको कृपा देते हैं उस कृपा से हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, अदरवाइज इट्स अ जॉ एक्सरसाइज। भक्ति सिद्धांत ठाकुर कहा करते थे इट्स अ जॉ एक्सरसाइज, सिर्फ जॉ हिल है। ऐसे गुरु या वैष्णव के प्रति जो बहुत अपराध करते हैं कहते हैं नाम लेते हैं लेकिन ना मुंह सूख जाता है, थोड़े समय बाद हृदय भी सूख जाता है, ऐसा इसीलिए होता है। जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि ना अगर कोई 100 बार अगर अपराध कर देता नाम के प्रति तो उसका टेस्ट जो है एकदम खत्म हो जाएगा, उसका टेस्ट खत्म हो जाएगा एकदम। उसने अगर टेस्ट हमको नहीं आ रहा ना, इसका मतलब 100 बार हम लोग कर चुके हैं, हम लोग शिशुपाल वाला काम कर चुके हैं, टेस्ट जा चुका है, 100 बार अपराध कर दिए। और उसके बाद जीव गोस्वामी बता रहे हैं कि अगर किसी ने 1000 बार से ज्यादा कर दिया है तो इसका मत तो ये भी हो सकता है कि वो नाम लेना छोड़ दे इस हद तक। तो ये जो है ये इतना डेंजरस है। तो जब तक अंतरंगा शक्ति के संपर्क में नहीं आते तब तक हम लोग वहां पर जा नहीं सकते और भगवान के सुंदर रूप का दर्शन भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान जो है बहुत ही उनका रूप ही अचिंत है, अनंत अव्यक्त रूपे ना, बहुत कठिन है। क्योंकि वैसे भगवान अनंत भी है, रूपेन भी है। रूप का मतलब थ्री डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ हाइट। भाई राधे रमन जी का लेंथ ब्रेथ हाइट कितना है? प्रभु जी 1 फुट इनकी लंबाई होगी और एक क्वार्टर की लेंथ और ब्रेथ। अच्छा तो अनंत कैसे? अनंत बोले तो सब और। तो उसके लिए फिर प्रभुपाद जी ने श्वेतांशत उपनिषद का श्लोक कोट किया यहां पर, परास्य शक्ति विविधाय एव श्रूयते, कि भगवान है और साथ में उनकी शक्तियां हैं, शक्तियां कार्य कर रही हैं। तो शक्तियां जो है वो अनंत है। तो विकार अगर आता है किसमें आता है? शक्ति में आता है, लेकिन भगवान के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं आता। तो इस प्रकार से शास्त्र का यह मत कि भगवान के अंदर किसी प्रकार का विकार नहीं आता, ये बात समझी जा सकती है कि शक्ति के अंदर विकार आ रहा है लेकिन भगवान के अंदर विकार नहीं आ रहा। तो इस प्रकार से यहां पर भगवान के जो कई एस्पेक्ट्स हैं जो कि यहां पर हाईलाइट हुए हैं कि भगवान जो है किस प्रकार से चारों ओर व्याप्त भी हैं और स्टिल वो अपना रूप भी मेंटेन कर रहे हैं। नमामीश्वरम सच्चिदानंद रूपम, रूप की बार बार बात आती है, वो इसी ने आ रही है। इसे जो निराकारवादी होते हैं वो ये कहते हैं कि पहले जो था ये अव्यक्त थे, बाद में अभी कृष्ण राम नरसिंह के रूप में दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद लीला खत्म होके वापस अव्यक्त हो जाते हैं। मायावादी तो ये मानते हैं, लेकिन भगवान गीता के अंदर बता रहे हैं कि अर्जुन ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं अभी मैं जैसा हूं मैं तो हूं, और ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब मैं नहीं होऊंगा, ऐसा कोई समय नहीं आएगा जब तुम नहीं थे या आगे नहीं होगे, ये राजा समस्त राजा नहीं थे या आगे जाके नहीं होंगे, ये थे ये हैं और ये हमेशा रहेंगे। तो भगवान इसका ये मतलब ये बता रहे हैं कि ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं निराकार था, अभी साकार हो गया, आगे जाके निराकार हो जाऊंगा। भगवान कह रहे मैं कृष्ण था, कृष्ण हूं और कृष्ण के रूप में रहूंगा। एक बार एक मायावादी ने प्रभुपाद जी को चैलेंज किया था, कहा स्वामी जी आप कैसे कह सकते हैं कि निराकार ब्रह्म के अंदर आनंद नहीं है? हाउ कैन यू से दैट देयर इज नो ब्लिस इन ब्रह्मन? तो प्रभुपाद जी ने कहा देयर इज ब्लिस बट देयर इज नो रस। रस मींस लविंग एक्सचेंजेस। तो आनंदमय आदान प्रदान जो है वो वहां पर नहीं है। आनंद है, ब्रह्मानंद में आनंद होता है, जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, बुढ़ापा नहीं है, बीमारी नहीं है, आनंद तो है वहां पर, ऑफकोर्स फोर्स आनंद है। और विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर कहते हैं निराकार ब्रह्म का आनंद कुछ ऐसा है जैसे कि नींद में आपको मजा आता है ना, जैसे भागवतम क्लास में भी नींद आती है ना, थोड़ा फिलोसफी अगर बढ़ जाती है ना तो नींद का जो है थोड़ा बढ़ जाता है ना मरकरी। तो प्रभुपाद तो वहां पर विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर बता रहे हैं कि विश्वनाथ चतुर्थ ठाकुर ने बताया कि निराकार ब्रह्म का आनंद कुछ वैसा ही है जैसे कि सुप्तावस्था में आनंद आता है। बहुत गहरी नींद हो तो अच्छा आनंद आता है ना, रजाई हो, सर्दी का मौसम हो, है ना, सो मंगलाती ना जाना हो, बहाना भी अच्छा खासा हो, ऐसे बीमार भी हैं थोड़े से ना? तो अच्छा लगता है। तो ये आनंद कुछ वैसा ही है, कुछ वैसा ही है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। तो बहुत ही तुच्छ है वास्तव में, काफी तुच्छ आनंद है। तो वास्तव में असली आनंद है और जो और वो इतना आनंद जो इतना गहरा है कि उसके लिए भौतिक शरीर कम पड़ता है। इसीलिए हमें आध्यात्मिक आनंद को लेने के लिए आध्यात्मिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए भाव भक्ति तक हम जा सकते हैं इस शरीर में ना, मैक्सिमम वी कैन गो टिल भाव भक्ति, प्रेम भक्ति नहीं, हम भाव भक्ति तक ही जा सकते हैं। क्योंकि प्रेम भक्ति का एक लक्षण है सांद्रानंद विशेषात्मा, यानी कि इतना ज्यादा आनंद, इतनी ज्यादा खुशी, इतना ज्यादा आनंद कि वो ये शरीर संभाल नहीं सकता, इट कैन नॉट हैंडल, ये डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। इसीलिए आध्यात्मिक शरीर की आवश्यकता पड़ती है, आध्यात्मिक जो हमारा वास्तविक रूप है, स्वरूप है, उसकी आवश्यकता पड़ती है उस आनंद को भोगने के लिए, उस आनंद को ऐसी रिलिश करने के लिए। इसलिए भाव भक्ति तक ही हम जा सकते हैं शरीर के अंदर, जिस तक जिसपे सारे के सारे अनर्थ नष्ट हो गए, कंप्लीट एब्सोल्यूट सिजेशन होता है प्रेम पे। लेकिन 100% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं भाव भक्ति पे, 75% नष्ट होते हैं अनर्थ निवृत्ति पे, इसके बाद 85% हो जाते हैं आसक्ति पे, ठीक है, रुचि पे भी खत्म हो जाते हैं 90-95% खत्म हो जाते हैं आसक्ति की स्टेज पे, और 100% अनर्थ नष्ट हो जाते हैं भाव की स्टेज पर, 100%। बस यह भाव की स्टेज पे पहुंचने के बाद ही अनर्थ वापस आ सकते हैं, हालांकि होता नहीं ऐसा, पर लेकिन एक कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हो सकता है। वैसे निष्ठा के में आने पहुंचने के बाद कोई अपराध करता नहीं है, वैसे ऐसा बहुत 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 रेयरली होता है। लेकिन एब्सोल्यूट सिजेशन होती है कृष्ण प्रेम, तो ये इतना आनंद है कि ये शरीर नहीं समा सकता। तब जो है तब हम वास्तव में भगवान को जान पाते हैं, भगवान के रूप को देख पाते हैं। और एक्चुअली जब भक्त को, अभी तो हम लोग दर्शन करते हैं भगवान के यहाँ पर, तो हमको ऐसा कोई आनंद नहीं आता, कभी कभी उपासी भी आती है, कभी कभी डे ड्रीमिंग भी करते हैं, भगवान आए खड़े तो हैं ऑर्डर के आगे लेकिन कुछ और सोच रहे होते हैं कि आज वहां भी जाना है, आज ये काम भी करना है, फिर वापस आते नहीं दर्शन तो कर ले, दर्शन दर्शन करने दर्शन करने, कभी कभी दर्शन का टाइम बीत ही जाता है, चलो जी चलो टाइम हो गया चलो एक मिनट अच्छा दर्शन कर ले, क्योंकि दर्शन करते करते ही हमारा मन कहीं और चला जाता है। लेकिन भाव भक्ति में जब कृष्ण के दर्शन होते हैं तो भक्त जो है उस वक्त ये सोचता है ये जो दर्शन हुए ये क्या था, भगवान के ये सुंदर रूप के दर्शन हुए ये क्या था, तो सोचता है कि ऐसा तो नहीं कि ये हेल्यूसिनेशन हो, क्योंकि बार बार कृष्णा 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 लगा रखी है, हमेशा कृष्ण भक्तों के साथ रहता हूँ, कृष्ण नाम भजन कर रहा हूँ, कृष्ण के बारे में पढ़ रहा हूँ, तो क्या है शायद ना हेल्यूसिनेशन हो गया होगा। फिर वो ये सोचता है अगर ये हेल्यूसिनेशन होता तो ना इतना आनंद नहीं आता, क्योंकि हेल्यूसिनेशन में आनंद नहीं आता, हेल्यूसिनेशन में सिर्फ एक ऐसी चीज नजर आती है जो कि है नहीं। जैसे हेल्यूसिनेशन जिनको बीमारी होती है ना वो अलग अलग चीजों को देखते हैं, फॉर एग्जाम्पल उनको लगेगा प्रभु ये गिलास मेरी और बढ़ रहा है मेरे अंदर समा रहा है, हेल्यूसिनेशन ऐसी बीमारी होती है कि खंबा टूट के गिर रहा है मेरे ऊपर गिर गया, तो ऐसे करके क्यों क्या हुआ क्या हुआ मैं कुछ नहीं, मुझे लगा ये खंबा मेरे ऊपर गिर रहा है, इसको कहते हैं हेल्यूसिनेशन। तो सोचता है बस सोचता है कि हेल्यूसिनेशन नहीं हो सकता क्योंकि हेल्यूसिनेशन में आनंद नहीं आता इतना। फिर बस सोचता है फिर ये क्या हो सकता है, कहता हो सकता है फिर ये मेरा ना सपना हो, क्या पता सपने मैंने देखा हो, कृष्ण बोले कि सपना हो ये। लेकिन भक्त सोचता है अगर ये सपना होता ना तो मेरी आंखें भारी होती, क्योंकि हम जब उठते हैं ना नींद से तो आंखें थोड़ी थोड़ी भारी होती है ना, क्योंकि सारा ब्लड यहाँ आ गया होता है, कहता है मेरे को ड्राउजीनेस भी नहीं हो रही, यानी कि सपना भी नहीं था ये। फिर भक्त सोचता है शायद ये कोई स्फूर्ति थी भगवान के रूप की ना, शायद मुझे कोई स्फूर्ति हुई होगी। लेकिन स्फूर्ति में क्या है थोड़ी सी झलक आती है, यहां तो पूरा सर से लेकर पांव तक रूप नजर आया मुझे। तो फिर वो गुरु के पास जाता है, गुरुदेव ऐसा ऐसा हुआ, तो गुरुदेव बताते हैं उसे कि तुम्हें साक्षात कृष्ण ने दर्शन दिए। गुरु इस बात को कन्फर्म करेंगे, हमें एज्यूम नहीं कर लेना चाहिए कि हाँ मुझे कृष्ण के दर्शन हुए, तो गुरु के पास जाके कन्फर्म करते, गुरु जो है इस बात को कन्फर्म करते हैं कि हाँ तुम्हें जो है कृष्ण के दर्शन हुए। तो उसके बाद जो भक्त है वो उन्माद में पागल हो जाता है कि कृष्ण के इतने सुंदर रूप के मुझे दर्शन हुए। तो उसके बाद जो उसकी उत्कंठा है कृष्ण कृष्ण की सेवा करने की, कृष्ण को वापस पाने की, कृष्ण का आलिंगन करने की, बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो भगवान का ना पूरा प्रोग्राम ऐसा ही रहता है, अपने रूप के दर्शन कराने का या अपनी और बढ़ाने की तृष्णा देने का। जैसे नाग मुनि के साथ किया गया, दर्शन दे दिया, एडवर्टाइजमेंट कर दी, उस वक्त गायब हो गए। अब जो है तृष्णा बढ़ गई नाग मुनि की, तो तपस्या और कठोर कर दी उन्होंने कि भाई अरे वो कृष्ण जिनके दर्शन हुए थे, उत्कंठा। इसलिए आप देखो श्रीमद् भागवतम में भी ये फॉर्मेट चलता है, पहले कैंटो में भगवान कृष्ण के बारे में बता दिया, कृष्ण कितने आकर्षक हैं, भक्तों के आदान प्रदान बता दिया। अब उसके बाद सेकंड कैंटो से लेकर नाइन्थ कैंटो तक कृष्ण का नामो निशान नहीं। लो जी अब भक्ति सोचने लगता है अरे कृष्ण के बारे में कब आएगा कब आएगा कब कब कब। तो इस दृष्टि ये जो कृष्ण के प्रति जो तृष्णा है इसे हृदय शुद्ध होता है। तो सेकेंड कैंटो से लेकर नाइन्थ कैंटो तक क्या है, इस अपेक्षा में कि कृष्ण के बारे में फिर से पढ़ूंगा तो कृष्ण का ऐश्वर्य, कृष्ण के अवतारों का वर्णन, अनेक और शिक्षा ये पढ़ता रहता है, पढ़ रहा है करके करते जब टेंथ कैंटो में पहुंचता है तो बड़ा अच्छा लगता है। हाँ तो भगवान का पूरा जो है फॉर्मूला यही है, अपने अव्यक्त रूपेण अनंत रूपेण का दर्शन कैसे कराते हैं भगवान भक्त को, थोड़ा हिंट दे देंगे, थोड़ी सी एडवर्टाइजमेंट कर देंगे, उसके बाद गैप। तो उस इच्छा के कारण कि मुझे फिर से कृष्ण मिलेंगे, फिर से कृष्ण के दर्शन होंगे, कृष्ण का दर्शन सुनूंगा, इस इच्छा से क्या है उसकी हृदय की शुद्धि होती है और फिर भगवान उसको दर्शन भी देते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए दर्शन लेने के लिए दर्शन सुनना बड़ा जरूरी है। दर्शन मतलब फिलॉसफी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम लोग सर दर्शन सुनते हो सो जाते हैं वातावरण है। या प्रभुपाद जी से पूछा था किसी ने, प्रभुपाद ये भक्त लोग भागवतम क्लास में सो क्यों जाते हैं? प्रभुपाद जी से पूछा एक बार भक्त ने, प्रभुपाद जी ने कहा बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज सो हाई एंड देयर इंटेलिजेंस इज सो लो दैट्स व्हाई दे स्लीप। मैं भी सोता हूँ ऐसा नहीं है, मेरी भी इंटेलिजेंस लो है बिकॉज द सब्जेक्ट मैटर इज सो हाई, प्रभुपाद जी ने कहा। लेकिन जब तक हम दर्शन सुनेंगे नहीं दर्शन कभी होंगे नहीं, पक्की बात है। इसीलिए सोसाइटी का नाम भी है इस्कान, इस्कान से भी सुनना है, इस्कान से भी सुनना है। तब जब दर्शन होंगे तो मुंह पे आएगी मुस्कान, यही इसका फंडा है, यही दर्शन करने का फंडा है। तो इसीलिए जो है दर्शन कैसे होते हैं? कानों से, कानों से। इसलिए शास्त्रों में आता है क्या, चाणक्य पंडित कहते हैं मेरे ख्याल से कि इंद्रिय भोगी व्यक्ति जो है वो आंखों से देखता है और जो आध्यात्मवादी है वो कानों से देखता है, वो कानों से देखता है, इस कान में आके देखता है, इस कान से उस कान से देखता है। तो ये श्रवण की जो इंद्रिय हमें बहुत इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए ताकि ये जो भगवान का रूप है क्योंकि अनंत है लेकिन फिर भी इतना सुंदर रूप है तो इसके दर्शन करने के लिए हमें भगवान की शरण में जाना होगा, भगवान की अंतरंगा शक्ति की शरण में जाना होगा तब, नहीं तो बड़ा मुश्किल है, मुश्किल भी नहीं असंभव है, एक्चुअली असंभव है। तो हमारे पास 10 मिनट है, किसी और कोई प्रश्न हो पूछ सकते हैं, कोई टीका टिप्पणी हो। यस प्रभु, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट ट्रुथ एंड गॉड? Absolute truth is source of God. God means controller, maintainer, destroyer, creator, God. God मतलब G-O-D, generator, operator, destroyer. So this is God, Vishnu, God, भगवान। कृष्ण क्या है? कृष्ण भगवान नहीं है, क्योंकि कृष्ण से भगवान आ रहे हैं तो उनका एक एस्पेक्ट है, एक एस्पेक्ट है। जैसे कि मान लीजिए किसी कंपनी का एक मालिक है, ठीक है, उसने यहां पर पंजाबी बाग में अपनी एक कंपनी खोली हुई है, उसकी एक ब्रांच है, ठीक है, वो यहां पर अपनी कंपनी चलाता है, तो उसने यहां पर सीईओ को बिठा कर रखा है, भाई सारा यहां पर देख रेख किया करो तुम, ठीक है, और वो खुद क्या करता है, फ्लोरिडा में गोल्फ खेलता है, गोल्फ खेलता है वो, ऐसे गोल्फ खेलता है वो, बिजनेस वगैरह नहीं देखता, वो गोल्फ खेलता है। एक दिन कॉल करता है, सीईओ साहब मैं सोच रहा हूँ एक पंजाबी पंजाबी बाग आके देख लो भाई कैसा काम वाम चल रहा है, बिजनेस कैसा चल रहा है। हाँ सर बिल्कुल सर, ऑफकोर्स सर, ऑफकोर्स सर। लेकिन कंपनी के अंदर जो लोग हैं काम करते हो क्या जाते हैं भाई, जो भी कंपनी में आया है ना सीईओ की अप्रूवल के बिना नहीं आता, जो कंपनी में आया भाई हमारी नौकरी कैसे लगी, सीईओ के साहब की वजह से भाई, वही तो यहाँ वही तो हेड है इस मालिक के, ये इस कंपनी के। तो जब मालिक आता है तो भी आम लोग यही सोचते हैं क्या कि भाई जो आया सीईओ की कृपा से आया, लेकिन असल में सीईओ कौन है, वो तो मालिक के द्वारा एम्प्लॉय किया गया, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। लेकिन मालिक कौन, मालिक जो है मैनेजमेंट में नहीं आता, मैनेजमेंट सिर्फ लीला करता है, गोल्फ खेलता है, दैट्स इट। उसने सीईओ को रखा हुआ है तो मैनेजमेंट देखो, ठीक है हम लीला में एंजॉय करेंगे। सो कृष्णा इज एब्सोल्यूट ट्रूथ, उनका एक एस्पेक्ट है मैनेजमेंट, उसके लिए विष्णु को एम्प्लॉय किया हुआ है, विष्णु टेक केयर मैनेजमेंट, हम लीला में रहेंगे, यशोदा मैया, राधा रानी, सुदामा, सुबल सखा, लीला, गोल्फ, लीला। लेकिन मैनेजमेंट के लिए विष्णु, मैनेजमेंट संभालो भाई, ठीक है, तो एक एक्सपेंशन कर दिया। सो विष्णु इज गॉड, वन एस्पेक्ट ऑफ कृष्णा। सो गॉड, सो कृष्णा इज नॉट जस्ट, कृष्णा में सिर्फ गॉडहुड नहीं है साथ में स्वीटनेस भी है, द स्वीटनेस एस्पेक्ट इज इन एब्सोल्यूट ट्रूथ। So Krishna is not God. Krishna is absolute truth, the source of God. Bhagwan ki strot hai. Bhagwan kaun? Vishnu, Narayan, Ram, Narsingha, Bhagwan. Jai ho, Bhagwan ji ki jai ho. Par hum bhajan karte hain absolute truth ka, Krishna. Is that okay? No. Huh? Yes.
What does Prabhupada mean when he says Krishna is supreme personality of Godhead?
Yeah, yeah. Lekin to ek to baat hoti hai prachar ki baat. ठीक है, तो तत्व में तो सारे एक ही हैं, इसलिए प्रभुपाद जी एनालॉजी दिया करते थे चांद की, अष्टमी का चांद चांद है, नौमी का चांद चांद है, द दशमी का चांद चांद है, एकादशी का चांद चांद है, पूर्णिमा का चांद चांद, सारे चांद, राम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, नरसिंह सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, बलराम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, कृष्णा सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, ओके नाउ एब्सोल्यूट ट्रूथ, पूर्णिमा का चांद कृष्णा, चांद की फुल मैनिफेस्टेशन पूर्णिमा के चांद की है, अष्टमी का चांद इज नॉट कंप्लीट मैनिफेस्टेशन है चांद वो भी राइट, उस तरह से राम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, परशुराम सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, बुद्ध अवतार सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, चांद 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 भाई, लेकिन एब्सोल्यूट ट्रूथ कंप्लीट मैनिफेस्टेशन पूर्णिमा का चांद, पूर्णिमा का चांद बोले तो कृष्णा, तो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ रस, ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है कि जिसको कृष्ण बोला आई एम सॉरी ये इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, ये कोई अवतार पूरी करेगा ना, अवतार लोग भले ही बोलेंगे, जैसे नरसिंह अवतार से को बोले भाई आप मेरे शिशु के रूप में आइए, मैं 5 साल रस में आपकी भक्ति करना चाहता हूँ, नरसिंह देव या कोई माधुर्य रस करना चाहे नरसिंह देव जी के साथ ठीक है, या कच्छप अवतार जी के साथ तो कुछ भी बनना पड़ेगा, दे कैन नॉट बी रासलीला विद कच्छप अवतार, कुछ ये रासलीला हो रही कच्छप अवतार की कैसे होगी, अभी केशव वगैरह वो पीछे होगी, वो पीठे चढ़ गई वो, सो कंप्लीट मैनिफेस्टेशन ऑफ एब्सोल्यूट ट्रूथ पूर्णिमा का चांद कृष्ण है, सारे चांद राम भगवान, you got the point yeah okay thank you very much haan ji hare krishna ek shabd mein krishna ko jo aap bol rahe hain ek shabd mein krishna kya hai ek shabd mein krishna ko kya keh sakte hain krishna bas
ek jaise bol rahe hain krishna se sare avatar ho gaye
hain haan
krishna ko supreme shabd mein kaise matlab kaha jayega ek shabd aur koi vishesh shabd hai
krishna ka वैसे तो anant hai anant naam anant roop anant gun anant leela उनका सब अनंत है, इसलिए उनका जो ब्रांड एम्बेसडर है वो कौन है अनंत शेष भाई, सब कुछ वो अंत वाला काम तो करते नहीं ना, वो सब अनंत, नाम भी अनंत, कृष्णा श्याम सुंदर यशोदा नंदन गोपी जन वल्लभ अल्लाह क्राइस्ट जिहोवा ये सब कृष्ण के नाम, ये सब कृष्ण के नाम है, तो कृष्ण का जो है एक नाम इसलिए है क्योंकि कृष्ण जो है आकर्षक है इसीलिए, और आनंद के सागर है कृष्णा, कृष्ण मतलब आकर्षक, ना मतलब आनंद, तो आकर्षक है और आनंद देने वाले इसलिए कृष्णा, यशोदा नंदन राधानाथ गोपीनाथ ब्रजेंद्र नंदन वृंदावन चंद्र ये भी हैं, परमात्मा सर्वसाक्षी सर्वव्यापी ये भी हैं, अल्लाह जिहोवा क्राइस्ट ये भी हैं, अनंत नाम, ये कृष्ण कुछ भी क्या है लिमिटेड नहीं है, सब अनलिमिटेड, कृष्ण भक्ति अनलिमिटेड,
ठीक है कृष्ण, यहाँ फिर ये जो वर्णन कर रहे हैं हिरण्यकश्यपु जी,
हाँ जी
भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी के रूप का,
भगवान का क्या, ये भगवान की कंप्लीटनेस का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर क्या है अंतरंग शक्ति की बात भी हो रही है ना, चित अचित,
चित भी है अचित भी है,
युक्ता यानी कि दोनों से जो युक्त है यानी कि तटस्थ शक्ति उसके बारे में वर्णन आ रहा है, तो एकदम परास्त शक्ति विधाये वशुए थे, उनकी तीन डिविजन कर दी, ओके ये ग्रुप ऑफ अनंत शक्ति अंतरंग शक्ति, ये ग्रुप ऑफ अनंत शक्ति बहिरंग शक्ति, ये ग्रुप ऑफ आनंद शक्ति तटस्थ शक्ति, कंप्लीटनेस, इसे चित अचित युक्ता है, या तो भगवान की कंप्लीटनेस, तो बहिरंग शक्ति की बात हो रही है, अचित अचित शक्ति की बात भी हुई यहां पे, तो भगवान किस तरह से कंप्लीट है और पूरी सृष्टि में व्याप्त है इंक्लूडिंग दिस जेल खाना मटीरियल वर्ल्ड, और मटीरियल वर्ल्ड के अंदर ये जो एम्बेसी खोली हुई है हमने राधा राधिका रमन मंदिर एम्बेसी है, यहां वीजा लगता है गोलोक धाम का, तो हर चीज में इस तरह से मुझे आप संतुष्ट लग रहे
हैं, मेरा कहने का मतलब यह है कि यह जो हिरण्यकश्यपु जी इतनी विशेष वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी के गुणों का वर्णन यहाँ कर रहे हैं या भगवान के गुणों का,
भगवान के बारे में, ब्रह्मा जी में अव्यक्त ये जो है अव्यक्त रूपेण कैसे आ जाएगा, भगवान के बारे में है तो देखिए सॉरी किसने कुछ बोला, हाँ यहां पर ना पर ब्रह्म की बात हुई है, पर ब्रह्म ब्रह्मा नहीं, पर ब्रह्म मैं उन पर ब्रह्म को नमस्कार करता हूं, वी आर ब्रह्म, और कृष्ण कौन है पर ब्रह्म, इनफैक्ट ब्रह्मा जी भी हर बार जीव तत्व नहीं होते सब, कभी कभी जीव जो है नॉट ऑलवेज, अगर एक जीव 100 जन्मों तक बिना पाप के अगर मनुष्य नहीं बिताता है तो उसको ब्रह्मा जी का स्थान मिल जाता है, या कहते हैं अगर 100 जन्म उसने वर्णाश्रम ठीक से बिता लिए तो. लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऐसा कोई जीव क्वालिफाई नहीं कर पाता. तो कभी कभी ब्रह्मा जी विष्णु तत्व भी होते हैं, दैट वेज. और ब्रह्मन का मतलब है, आता है ये शब्द बृहद से. बृहद मतलब ग्रेट, महान. जो बोलते हैं बृहद मृदंगा मीन्स महान मृदंगा, तो बृहद, बृहद से शब्द आया है ब्रह्मन. तो ग्रेट, तो ग्रेट में जो ग्रेटेस्ट है परब्रह्मन. तो परब्रह्म की यहां पर जो है बात हो रही है.
कोई अगर 100 अपराध कर देता है हरि नाम के प्रति, ये अपराध जो है आर दे रियली वेरी सीरियस अपराध और जस्ट?
हाँ सीरियस वाले भक्ति प्रति क्या तो अपराध होगा ना, अपराध वैष्णव अपराध वेरी डेंजरस.
तो सीरियस ऑफेंसेस करेगा यार, छोटे छोटे ऑफेंसेस,
छोटे छोटे से बड़ी की मोटिवेशन बनती है. किसने सोचा ऐसे प्रभु देखो हम रुक्मिणी कृष्णों के प्रति अपराध नहीं करेंगे, वरिष्ठ वैष्णव है पर आप लोग प्रति नहीं करेंगे, जो भक्त है. ये जो चुन्नू पुन्नू येल्लो वल्ले घूम रहे हैं ना, येल्लो येल्लो डर्टी वेल्लो, इनके पीछे चलता है. ठीक है, तो शुरुआत ऐसे होगी तो धीरे धीरे ऊपर जाएंगे. कहता है येल्लो क्या, थोड़ा व्हाइट वालों को भी लपेट लेते हैं. ठीक है, व्हाइट वाले लपटे. ठीक है, उसके बाद क्या एक दो सैफ्रॉन में बैठे हैं, अभी अरे अभी अभी तो मिला लूंगा सैफ्रॉन. अरे उसके बाद ऐसे ऐसे जाते हैं, फिर क्या धीरे धीरे गुरु के पास जाते हैं, गुरु के प्रति भी अपराध करते हैं, फिर प्रभुपाद जी के प्रति भी अपराध कर देते हैं. शुरुआत ऐसी होती है छुट्टे छुट्टे से. इसलिए जब पहला नाम अपराध पढ़ते थे ना कि हरि नाम का प्रचार करने वाले महाभागवतों की निंदा करना, उसको बाद में चेंज किया, हरि नाम का प्रचार करने वाले भक्तों की निंदा. हाँ भाई महाभागवतों की निंदा करना भाई गलत बात है, लेकिन इन लोगों की, ये तो महाभागवत थोड़ी है, इनको लपेट दूंगा मैं. समझते हैं क्या है अपने आप को. तो इसलिए जो है शुरुआत ऐसी होती है. सो दैट्स व्हाई त्रिनादति सुनिचेना तरो रफी सहिष्णा हमानी ना मान देना. अगर इस ये चार चीजें अगर हमने अपने व्यक्तित्व में नहीं लाए, अपने चरित्र में नहीं लाए, तो हम अपराधों से कभी मारे जा सकते हैं. ये श्लोक जो है ये कवच है कि दृढ़ से भी ज्यादा विनम्र होना, वृक्ष से भी ज्यादा सहिष्णु होना, हा? और मान की इच्छा ना करना, सबको मान देना. जब तक ये चरित्र में नहीं आया, यानी कि अपराध का क्रोकोडाइल कभी भी आपको खा सकता है. वेरी डेंजरस. तो बिल्कुल हमें जीव अपराध नहीं करना चाहिए, चीटी के प्रति भी अपराध नहीं होना चाहिए. नेवर एवर, व्हाट टू स्पीक ऑफ डिवोटीज, छोटे से छोटा.
एक और था प्रभु जी कि यहाँ अनंत अव्यक्त रूपेण बताएंगे. प्रभुपाद कहते हैं कि एज यू सेड यहाँ पे पर ब्रह्म का डिस्क्रिप्शन हो रहा है. प्रभुपाद सेज दैट दिस मटेरियल मैनिफेस्टेशन विराट रूप है, इट्स नॉट डिफरेंट फ्रॉम श्याम सुंदर कृष्ण.
हाँ,
इसके बारे में कुछ बता सकते हैं.
विराट रूप इज
उस पर मेडिटेट करना, थिंकिंग अबाउट इट इज ऑल्सो इक्वल टू थिंकिंग अबाउट. हाँ, इसके बारे में थोड़ा.
जैसे मैंने बताया ना कि जो भक्त होता है ना, उसके लिए एक्चुअली मटीरियल वर्ल्ड एग्जिस्ट नहीं करता. फॉर हिम द मटीरियल वर्ल्ड डज नॉट एग्जिस्ट. तो जो भक्त होता है वो इवन मैटर के अंदर भी स्पिरिट को देख लेता है. जैसे प्रहलाद महाराज ने क्या बोला, खंभे में भगवान है तो सही, दिख नहीं रहे क्या? For him, yes, the Lord is there. No? भगवान है तो प्रहलाद महाराज को दिख रहे हैं और उनको हैरानी हो रही है. इट इज नॉट दैट कि मतलब प्रहलाद महाराज फैब्रिकेट कर रहे हैं कि ना, थोड़ा बहसबाजी के लिए बोल देता हूँ, है तो सही, बोले दिख नहीं रहे लेकिन है. बट एक्चुअली ही इज फीलिंग यार है तो सही. फॉर एग्जाम्पल समवन स्पीक्स टू मी कि प्रभु जी आप क्या माइक है क्या, वो है तो सही, क्या अजीब बात कर रहे हो प्रभु, दिख नहीं रहा आपको. It is that direct for Prahlad Maharaj. So those who are devotees, they see Lord even in matter. And those who are demons, they see matter even in God. इतने मूर्ति पूजा, उनके लिए मूर्ति है सिर्फ ये. ये संगमरमर की मूर्ति है, राधा राधिका रमन. So they see matter even in God. Demons. लेकिन जो भक्त होता है उसके लिए material world exist ही नहीं करता है. He is always in spiritual world. Prabhupada ji was always in spiritual world, actually. So that's why ऐसे भक्त की दृष्टि ऐसी होती है. So that's why अगर वो यहाँ पर विश्व रूप भी देख रहा है ना, यहाँ पर देख रहा है कि भाई ये जैसे पेड़ बताए गए, पेड़ भगवान के बाल हैं, नदियाँ जो हैं भगवान की नसें हैं, पहाड़ जो हैं भगवान की हड्डियाँ हैं, इतना आता है सेकंड कैंटो में. But he sees everything in connection to Krishna. जैसे कि ना प्रभुपाद जी से भक्त ने बोला कि प्रभुपाद आप बताते हैं कि सूरज और चांद ये भगवान की आंखें हैं, तो भगवान तो प्रभुपाद के नाक और ये होंठ वगैरह कान ये नजर क्यों नहीं आ रही है, सिर्फ आंखें नजर ही क्यों आ रही है सर हमको, भाई बाकी भी तो नजर आना चाहिए ना, सिर्फ आंख नजर आ रही है, भाई ये चांद और सूरज भगवान की आंखें हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा तुम अगर अंधेरे में होते हो तो बिल्ली का कौन सा अंग देख पाते हो, प्रभुपाद जी आंखें देख पाते हैं। तो प्रभुपाद जी ने कहा क्योंकि तुम अंधकार में हो, संसार के अंधकार में हो तुम, इसलिए तुम सिर्फ भगवान की आंखें देख पाते हो। तो दोष भगवान का नहीं कि भगवान की नाक और कान आंख नहीं है, आंख या ये बाकी अंग नहीं है, तुम अंधकार में हो, तुम अज्ञानता में हो। इसीलिए जैसे कोई व्यक्ति अंधेरे में सिर्फ बिल्ली की आंखें देख पाता है बस, तो तुम वही हो। तो इसीलिए जो है जैसे जैसे हमारे अज्ञानता दूर होगी तो भगवान के बाकी रूप भी नजर आने शुरू हो जाएंगे, हमको संसार में नजर आएंगे।
थैंक यू सी। और एक और था, आपने पूछा था कि आपने बताया था कि दिस बॉडी मटेरियल बॉडी कैन नॉट सस्टेन प्रेम, प्रेम लेवल पे
यस आनंद को नहीं समा सकती हो।
तो इफ वी सी कि हमारी जो आचार्य है हाउ इज दैट कि देवर,
क्योंकि उनका आध्यात्मिक शरीर है, प्रोटीन का हमारा शरीर है नहीं उनका। गुरुज बॉडी इज स्पिरिचुअल, यू नो गुरुज बॉडी इज स्पिरिचुअल, दे आर एक्सपीरियंसिंग प्रेमा, स्पिरिचुअल बॉडी है वो।
Does it mean कि जीवन मुक्त जो रूप गोस्वामी
और जीवन मुक्त है वो,
तो he one if one receives that spiritual body then he can sustain it।
हाँ, so even to do आचार्य लीला they have spiritual body, उनका हड्डी मांस प्रोटीन का शरीर थोड़ी होता है आचार्यों का, sound like that। जैसे रामानुजाचार्य जी का जो है रूप अगर आप वहाँ देखें जाएंगे ना आपके श्रीरंगम में, श्रीरंगम राइट या उडुपी, रामानुजाचार्य श्रीरंगम ना राइट, तो श्रीरंगम है रामानुजाचार्य बॉडी इज देयर। और अगर आप वाकई में रामानुजाचार्य जी की आंखों में देखें यू सी दैट एक्चुअली दीज आर द आईज ऑफ रामानुजाचार्य, सी दैट देयर इज अ पर्सन, स्पिरिचुअल बॉडी। आचार्यों का आध्यात्मिक शरीर है, आध्यात्मिक रूप है उनका। हमारी बुद्धि जो है वो जड़ है, इसलिए हर चीज को जड़ देखती है। जैसे मैं अगर ब्लू गॉगल्स लगा लूं तो मैं, प्रभु जी आप लोग व्हाइट कुर्ते क्यों नहीं पहनते, आप लोग ब्लू कुर्ते पहन के आते हो मंदिर में आप लोग, पर आप लोग व्हाइट पहन के आए, मैंने ब्लू गॉगल्स पहने हुए हैं। तो हमारी जड़ बुद्धि है, इसीलिए हम आचार्यों को भी भौतिक देते हैं। जैसे कभी हम से किसी हमने गुरु को देख लिया, जी गुरु सो रहे हैं, गुरु खराटे मार रहे हैं, कहते हैं यार मैं भी खराटे मार रहे हैं, यार गुरु भी खराटे मार रहे हैं, मैं भी सोए पेट खाली करने जाता हूँ, ये पेट खाली करने जाते हैं ठीक है, मुझको भी छींकें लगती है, मुझको जुकाम होता है, बलगम होती है, इनको भी देखो छींकें हैं बलगम हो रखी है, इनका क्या भौतिक शरीर है, जड़ बुद्धि, आध्यात्मिक शरीर है आचार्यों का।
अगर इफ अ पर्सन, अगर एक व्यक्ति पूरा अपना प्रोसेस फॉलो करके वो प्रेम तक पहुँच रहा है, उसे भी वो आध्यात्मिक शरीर होता है।
हाँ आध्यात्मिक शरीर क्या प्रेम तक पहुँचे,
उसका भी आध्यात्मिक शरीर ही होगा उससे।
किसका?
जो पूरा प्रोसेस फॉलो करके स्टेजेस से पूरा प्रेम तक पहुँच, इस बॉडी ऑल्सो स्पिरिचुअल एडिट।
हाँ जो उसको अगर शरीर मिलता है सो हम कहते हैं स्वरूप सिद्धि। स्वरूप सिद्धि में क्या होता है, जीव को वो शरीर मिलता है भौम वृंदावन में, किसी यूनिवर्स में या इस यूनिवर्स में राधा कृष्ण की लीला में प्रवेश करने का। तो व्यक्ति भौम लीला में जो है सेवा करता है भगवान की, ठीक है, गोपियों मंजरियों के अनुगत होके, फिर यहाँ फर्दर ट्रेनिंग होती है कि भाई वहाँ यहाँ थोड़ी और रिहर्सल कर लो, वहाँ पर फाइनल मूवी लॉन्च है, उसको कहते हैं वास्तु सिद्धि। हियर इज स्वरूप सिद्धि, वास्तु सिद्धि।
वो तो है जी, मैं जस्ट पूछ रहा था कि दिस बॉडी ऑल्सो बिकम स्पिरिचुअल,
भौतिक इंद्रियों से तो भगवान की सेवा कर ही नहीं सकते, हमारी इंद्रियां आध्यात्मिक हो जाती है क्योंकि वैष्णो और गुरु के आदेश पर हम लोग सेवा कर रहे हैं। डीडी वर्शिप हो, प्रीचिंग हो, मृदंग बजाना हो, करताल बजाना हो, सेंसेस बिकम स्पिरिचुअलाइज्ड। जैसे प्रभुपाद एग्जांपल दे रहे थे, जैसे रेड रेड हॉट जो रॉड होती है, रॉड को अगर आप अग्नि में डाल दो, इट रिक्वायर्स ऑल क्वालिटीज ऑफ फायर, अग्नि भी है, गर्म भी है, ऊष्मा भी है, रोशनी भी है, जैसे अग्नि में सेम क्वालिटीज। तो आध्यात्मिक हो जाती है इस तरह से हमारी इंद्रियां, इवन नौसखीय भक्ति भी जिसके अंदर अभी अंदर काम वासना भी है, क्रोध भी है, ईर्ष्या भी है, इवन उसकी इंद्रियां भी, दैट्स द पावर ऑफ भक्ति। That's the power of bhakti. So powerful.
Thank you.
Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai, Hai Gopra Manande.